अध्याय 10 विभिन्न विषयों के शिक्षण द्वारा मूल्य शिक्षा। भाषा शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विषय शिक्षण, पर्यावरण शिक्षा द्वारा मूल्यों की शिक्षा। भाषा शिक्षण द्वारा मूल्य शिक्षा। त्रिभाषा सूत्र। इस सूत्र के अनुसार विद्यार्थी तीन भाषाओं का अध्ययन करेगा, एक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दो हिंदी या आधुनिक भारतीय भाषा, तीन अंग्रेजी। भाषा का विकास। 3 वर्ष तक लिखित भाषा का विकास नहीं होता। बच्चा अर्थहीन कविता, तुकबंदी और लोरिया सुनना पसंद करता है। 4 से 6 वर्ष तक का बालक चित्रों के साथ अक्षरों का बोध करता है। 7 वर्ष का बालक वयस्कों के सहयोग से पढ़ने लगता है। यहीं से मूल्य परक शिक्षा प्रारंभ होती है। 14 वर्ष से आगे का बालक भाषा का काफी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। गद्य पद्य के माध्यम से उसे मूल्य शिक्षा दी जाती जा सकती है। उसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ने दी जाए, इसे वह मूल्यों की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सद्वृत्तियों द्वारा मूल्य शिक्षा दी जा सकती है। अतः सद्वृत्तियों का विकास किया जाए, उनमें भाव पैदा किया जाए, उन्हें संवेदनशील बनाया जाए, संस्कृति सौंदर्य की मानवता की ओर आकृष्ट किया जाए, सामाजिक आदर्श बताए जाए, देश प्रेम की भावना पैदा की जाए। साथ ही साथ गद्य पद्य नाटक कहानी सूक्तियों को पढ़ाते समय मूल्य शिक्षा दी जाए। 1 पात्रों की उक्ति के साथ मूल्य शिक्षा। नाटकों या कहानी पढ़ाते समय पात्रों के अनेक कथनों में शिक्षा और उनके मूल्य प्राप्त होते हैं। उन मूल्यों को ग्रहण करने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। जैसे बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा, यह घटना किसी से न कहना, नहीं तो लोग अपाहिजों का विश्वास करना छोड़ देंगे। कहावतों और मुहावरों के द्वारा मूल्य शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि इनमें कभी कभी शिक्षाप्रद मूल्यों की बातें होती हैं। नीति संबंधी कबीर, रहीम, तुलसी, नरोत्तम दास, बिहारी राम नरेश त्रिपाठी आदि कवियों की कविताओं में उच्च मूल्यों का वर्णन भरा होता है। पाठ के अंत में निष्कर्ष बताते समय वर्णित मूल्य बताया जाए। गद्यांशों में वर्णित मूल्यों का ज्ञान गद्य की शिक्षा के समय दिया जाए। सामान्यीकृत मान्यताओं के प्रसंगों में सत्य और मान्यताओं की बातें रहती हैं, उनके द्वारा मूल्यों का विकास किया जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की उक्तियों में मूल्य की बहुत सी बातें होती हैं। शिक्षक उपयोगी स्थलों को चुनकर स्पष्ट करें। विभिन्न प्रसंगों को बताते समय मूल्य के महत्वों की चर्चा की जानी चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत भाषा पढ़ाते समय तमाम मूल्य मिलेंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी की शिक्षा देते समय मूल्यों का ज्ञान ध्यान में रखा जाए। छात्रों से बातचीत करते समय उनसे पूछें कि उनके घर, गाँव, कस्बे या अथवा शहर में ऐसे लोगों के नाम बताओ जो सम्पन्न होने पर भी गरीबों की सहायता नहीं करते। कहानी, संवाद, लेख, कविता आदि पढ़ाते समय विश्वास, मान्यता या मूल्य की कोई बात मिले तो उस पर अधिक बल देना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों के सामने वे सदैव ही मूल्यगत आचरण करें। शिक्षक के आदर्श नैतिक आचरणों के छात्र अधिक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत की शिक्षा देते समय मूल्यों के स्थलों को चुनकर उनका बोध अपने शिष्यों से करावे। द्वितीय, विज्ञान शिक्षण द्वारा मूल्यों की शिक्षा। आज विश्व में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों ने पूरी सृष्टि को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। वह चांद और सितारों के लोक में जा रहा है। जेब से मोबाइल निकालकर दूरस्थ बसे अपने परिजनों और स्वजनों से बातें कर सकते हैं। दूरदर्शन के आविष्कार ने हमें कूप मंडूक नहीं रहने दिया। प्रकृति के रहस्यों पर से विज्ञान ने पर्दा हटा दिया है। विज्ञान आविष्कारों से उत्पन्न तकनीक ने मानव का बड़ा कल्याण किया है। जीवन सरल हो गया है। असाध्य गंभीर बीमारियों से मनुष्य का प्राण बचाने के लिए विज्ञान ने हमें हर प्रकार की औषधियां दिया है। इसी कारण इस युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। आज सर्वत्र ही वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। नए युग की सोच काफी तेज हो गई है। यह ठीक है कि हम आज अधिक भौतिकवादी हो गए हैं, लेकिन सत्य में हमारा विश्वास भी बढ़ा है। वैज्ञानिक सत्य की खोज में सदैव लगा रहता है और सत्य की खोज के बिना, खोजे बिना चैन से सांस नहीं लेता। इस प्रकार विज्ञान विषय से सत्य की शिक्षा तो स्वतः मिल जाती है, क्योंकि विज्ञान का आधार सत्य स्वयं है। विज्ञान की शिक्षा द्वारा मूल्यों का बोध इस प्रकार कराया जा सकता है। विज्ञान की शिक्षा के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा। एक, विज्ञान का क्रियात्मक पक्ष मूल्यों के विकास में अधिक सहायक है। दो, विज्ञान में मानसिक अनुशासन का विशेष महत्व है, इससे छात्रों में चिंतन और तर्क का विकास होता है। तीन, सत्य बोलने और लिखने, धैर्य, अध्यवसाय के मूल्य विकसित होते हैं। चार, प्रकृति में व्याप्त विविधता जंतु वस्तुओं, जीव वस्तुओं और पेड़ पौधों के वर्गीकरण, खाद्य श्रृंखला, सहजीवन, परोप जीवन आदि के माध्यम से प्रकृति की व्यवस्था के दर्शन होते हैं। सौंदर्य बोध और जिज्ञासा विकसित होती है। पांच, बीमारियां और टीकाकरण, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा के भाव पैदा होते हैं। छह, स्वच्छता की आदतें विकसित होती हैं। महत्वाकांक्षा, आत्म अनुशासन, परिश्रम, धैर्य, क्षमाशील, सच्चाई, सहयोग, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व जैसे गुणों का विकास होता है। संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। परमाणु आदि पाठों से विश्व बंधुत्व, सुरक्षा, भ्रातृत्व और विनम्रता के मूल्य विकसित होते हैं। अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति के मूल्य विकसित होते हैं। मूल्य द्विधा से संबंधित समस्यात्मक विवरण तैयार कर न्यायिक शिक्षण, प्रतिमान मूल्य विश्लेषण शिक्षण, प्रतिमान तथा मूल्य स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर मूल्य शिक्षा दी जा सकती है। विज्ञान क्लब, पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान माला, प्रतियोगिताओं के आयोजनों द्वारा मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इन सब कार्यक्रमों का आयोजन करके विज्ञान शिक्षक बालकों में अनेक मूल्यों का विकास कर सकता है। तीन, सामाजिक विषय शिक्षण द्वारा मूल्यों का विकास। मूल्यहीन समाज समाज नहीं। आज के छोटे छोटे बड़े बच्चे कल के विशाल भारत के नागरिक हैं। हमारे समाज में आज सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, परोपकार, धैर्य, सहानुभूति, अभयदान, साहस और क्षमा जैसे मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सभी मिलकर सामाजिक विषय कहे जाती हैं। इस विषय की शिक्षा के द्वारा बच्चों में अनेक महत्वपूर्ण मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। भूगोल की शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। हर देश एक दूसरे से संबंध रखता है। इस प्रकरण की शिक्षा द्वारा विश्व बंधुत्व भावना का विकास कर सकते हैं। ठंडे और गर्म देशों के निवासियों के प्रति सहानुभूति पैदा कर सकते हैं। विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ाते समय वहां के सद्गुणों के आदर्श का परिचय करा सकते हैं। जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों, जीवों और के बारे में बताते समय उनकी रक्षा के संदर्भ में अहिंसा के मूल्य विकसित कर किए जा सकते हैं। पृथ्वी एक है, इस पर रहने वाले किसी भी देश के हो सभी एक है, इसमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। मानव प्रेम और एकता के मूल्य का विकास किया जा सकता है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से बच्चों में विश्व बंधुत्व और प्रेम सौहार्द जैसे उदात्त मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। इतिहास की शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। इतिहास महान लोगों के जीवनियों से परिपूर्ण है, अतः उनकी घटनाओं की शिक्षा पौरुष, साहस, महत्वाकांक्षा, सत्य, सहानुभूति, कर्तव्य परायणता जैसे मूल्यों का विकास छात्रों में कर सकते हैं। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जैसे उदात्त गुण विकसित किए जा सकते हैं। मानवीय संबंधों को दृढ़ किया जा सकता है। धार्मिक समन्वय स्थापित कर सकते हैं। चरित्र निर्माण, धर्म निरपेक्षता आदि गुण विकसित कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र की शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। नागरिक शास्त्र के पाठों की शिक्षा के द्वारा छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों के मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। शांति के मूल्य को विकसित कर सकते हैं। समाज शास्त्र की शिक्षा और मूल्यों का विकास। विविध जातियों और उनके संस्कारों का ज्ञान दे सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और उनके आदर्शों के मूल्य स्पष्ट करके जो अच्छा है उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकते हैं। रीति रिवाजों का परिचय दे सकते हैं। यह अर्थशास्त्र की शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, न्याय होना चाहिए। त्याग, सहयोग, श्रम की महत्ता, न्याय आदि मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार समाज विज्ञान के विभिन्न अंगों की शिक्षा के द्वारा उक्त अनेक मूल्यों का विकास छात्रों में किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास। यहाँ हम पर्यावरण का अर्थ पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण में सुधार के लिए बैठकें, भारत में आयोजित कार्य गोष्ठियां, शिक्षक और पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति और महत्व तथा इसके द्वारा मूल्यों को विकास का अध्ययन करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा। प्राचीन काल से ही धरती मनुष्य और जीवधारियों का आवास और जीवन आधार रही है। इस पर स्थित वन एवं जल स्रोतों को धरती के प्राणियों ने समय समय पर सवारा और उपयोग किया है। इन प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा धरती के समस्त जीवों और इनके प्राकृतिक संसाधनों के मध्य निरंतर एक संतुलन बना रहता है। जब जब यह प्रकृति संतुलन डगमगाया, उसके बाद एक हमारी संस्कृतियां और वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां लुप्त तो हो गईं। वन्य जीवधारियों की कीमत पर मनुष्य का वर्चस्व बढ़ने के साथ धरती पर सहारा, गोबी और थार जैसे मरुस्थल उभरने लगे। मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं संभवतः इसी असंतुलन के कारण लुप्त हुई। दुनिया की भविष्य हमारी धरती के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और यह स्वास्थ्य हमारी धरती के पर्यावरण पर। आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग व विनाश हो रहा है, उसे अब मूक दर्शक बनकर नहीं देखा जा सकता। पश्चिमी देशों के लिए पर्यावरण विकास का अर्थ वहां के जीवन यापन स्तर को ऊंचा उठाना है, किंतु भारत के लिए पर्यावरण का अर्थ यहाँ के लोगों की जीवन मृत्यु का प्रश्न है। पर्यावरण शिक्षा का सही अर्थ व्यक्तियों को जीवित रहने का ज्ञान है। हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इनकी निर्भरता पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अन्न का उत्पादन मुख्यतया पशुओं की भागीदारी से किया जाता है। इन जानवरों का चारा प्रकृति से प्राप्त होता है। ईंधन इमारती लकड़ी, वायु, जल तथा मिट्टी आदि सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं। इनकी उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्य एक प्राकृतिक साम्य है। इस साम्य अवस्था के अंतर्गत हमारे संसाधनों की मात्रा पर्याप्त है। महात्मा गांधी कहा करते थे, प्रकृति में हर एक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु लालच पूरा करने के लिए नहीं। हमारी लालची प्रवृत्ति ने प्राकृतिक संसाधनों को इस कदर झिझोड़ डाला है कि विश्व का कोई क्षेत्र ऐसा हो जहां प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई हैं। आज धरती के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव और अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। कृषि भूमि शहरों में और वन भूमि कृषि भूमि में बदलती जा रही है। कहीं कहीं आर्थिक समृद्धि के लिए खनन ने प्रकृति को अत्यधिक विध्वंसित किया है। मनुष्य की इस शोषण प्रवृत्ति और विनाश की नीति के खिलाफ प्रकृति भी मनुष्य को बदला लेने लगी है। प्रति वर्ष जहां मृत्यु दर व रोगियों की संख्या घटाने का प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, महामारी, भूस्खलन, भूचाल आदि अनेक आपदाओं से स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण निवासियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर से विश्वास उठ जाना है। ग्रामीण निवासी अब यह सोचने लगे हैं कि उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने का दम ग्रामीण पारिस्थितिकीय तंत्र अथवा ग्रामीण तंत्र नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व को देखते हुए विचार व्यक्त किया गया कि पर्यावरणीय शिक्षा को निम्नतम स्तर से प्रारंभ कर विश्वविद्यालय स्तर तक निर्धारित किया जाए। यह शिक्षा तभी प्रभावी बन सकेगी जबकि पाठ्यक्रम प्रासंगिक और अर्थपूर्ण हो। पर्यावरणीय शिक्षा। आधुनिक शिक्षा और शिक्षण का नया आयाम है। इसका मुख्य आग्रह पर्यावरण की संभावनाओं, विलक्षणताओं, समस्याओं एवं चुनौतियों को ज्ञान कौशल एवं मूल्यों के स्तर पर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार उतारना है जिससे वह अपने भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। इन क्षेत्रों में उपलब्ध विकृतियों एवं प्रदूषण की स्थिति को भली प्रकार समझ कर उनके प्रभावों को कम कर सके। पर्यावरण शिक्षा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित पर्यावरण चेतना की उपज है जिसे प्राकृतिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तरों पर औपचारिक, निरौपचारिक और आनुषंगिक तीनों ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके लिए विकासशील एवं अंतर विद्या परक पाठ्यक्रम की संरचना सृजित करने तथा इसके बहुआयामी स्वरूप के अंतर्गत कई आधुनिक रचना कौशलों, शिक्षण विधियों, युक्तियों तथा शैक्षिक टेक्नोलॉजी के आयामों के अनुप्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण की नवीन अवधारणाएं तथा उसकी समस्याओं का प्रभाव समाधान प्राप्त करने की दृष्टि से नित्य जानकारी विकसित हो रही है। मनुष्य की लालची प्रवृत्ति ने प्राकृतिक संसाधनों को निचोड़ डाला है। रोगियों की संख्या और मृत्यु दर बढ़ रही है। आज पर्यावरण में सुधार करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।